الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاح، بروز قیامت میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں زیادہ درود پڑا ہوگا. ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام کہانی سے حقیقت تک لیے ایک بار پھر حاضری ہے، اور الحمدللہ رکن شورا حاجی امین اتاری سلامہ الباری بھی جلوہ فرما ہے انشاءاللہ الکریم. آج ہم نے رکن شورا سے جو رہنمائی لینی ہے کہ اصل میں اللہ پاک کا انعام کس چیز کو کہا جاتا ہے، اللہ پاک کا حقیقی طور پر انعام کون سی چیزیں کہلا سکتی ہیں. حضور، عام طور پر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی ترقی مل جاتی ہے، کسی کو مال مل جاتا ہے، کسی کو شہرت مل جاتی ہے، کسی کو منصب مل جاتا ہے، یا دنیاوی طور پر اسے کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے اللہ کی بڑی رحمت ہے، جی اللہ کی مجھ پر بڑی نعمت ہے. لیکن اگر مال نہیں ہوتا تو وہ کہتے پتہ نہیں اللہ ناراض ہو گیا ہے، کیا مسئلہ ہو گیا ہے، کون سی خطا ہو گئی کہ میرے پاس پیسہ نہیں. تو کیا مال ملنا، دنیا ملنا، یہی اللہ کا انعام ہوگا؟
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. عمر بھائی، یہ بات تو حقیقت ہے کہ بعض کاموں میں جو لذت ہوتی ہے نا، وہ دنیا کی دولت میں نہیں ہوتی ہے. انسان یوں تو زندگی میں کئی معاملات میں ظاہر کوشش کرتا ہے، لیکن در حقیقت اس کو جو حقیقی خوشی ہے اور جس کو کہتے ہیں نا کہ روحانیت، ایک چاہت، تو وہ بعض اوقات زندگی کے کوئی ایسے اٹیم ہوتے ہیں، زندگی کے کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جس سے اس کو کوئی حاصل ہوتا ہے. ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں چند دنوں سے سوچ رہا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ پاک انعام فرماتا ہے. کئی بات میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی، تو یہ انعام کیا ہے؟ میں لفظ انعام کے بارے میں میرے ذہن میں بات گھومتی رہتی تھی. تو کہا ایک دن صبح کا وقت تھا کہ میں دریا کنارے جانا واک کر رہا تھا، تو وہاں ایک جگہ پر میں نے کینٹین پر پانی پیا اور کچھ جوس وغیرہ بھی خریدا اور چل پڑا. جب شام کو اپنے مقام پہ جہاں پہنچا تھا، نکلنے کا ارادہ کیا اور ایک رکشے والے کو میں نے جب پیسے دینے کا سوچا اور جیب میں ہاتھ ڈالا تو میں پرس نہیں تھا میرا. اب میں بڑا حیران کہ پرس کہاں گیا. سوچ کے دن بھر میں کیا کرتا رہا، تو یاد آیا کہ آخری مرتبہ تو پرس کینٹین پہ نکالا تھا، اور پھر دن بھر کوئی ایسی روٹین بھی نہیں تھی. خیر، میں زیادہ پریشان اس لیے تھا کہ اس پرس میں رقم ایک امانت کے طور پہ بھی کچھ زیادہ میں نے رکھی ہوئی تھی، تو میں پریشان یوں بھی ہوا تھا کہ امانت بھی ادا کرنی ہے. تو خیر، یہ سوچ کر کے اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، تو میں اپنے جو مقام تھا اس کی طرف پیدل چل پڑا. تو اچانک میرے فون کی گھنٹی بجی. تو میں نے جب فون اٹھایا تو ایک شخص کی آواز تھی کہ آپ صبح میری کینٹین پر آئے تھے. تو کہاں؟ تو کہا کہ آپ میری کینٹین پہ کچھ بھول گئے، آپ میرے پاس آ سکتے. تو اس نے مجھے بلایا تو میں تو پہنچا فوراً وہاں پر. جب وہاں پہنچا تو اس شخص نے مجھے اپنی جو ہے نا وہ मेरा पर्स मुझे वापस किया और कहा कि इसको देख लें ज़रा, इसमें आपको, तो मैंने देखा तो रकम वगैरह भी वैसे ही मौजूद थी। तो फिर उसने एक डब्बा खोला और मिठाई का डब्बा जो है ना वो उसने निकाला और कहा कि हुजूर मिठाई भी लीजिए। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मिठाई किस चीज़ की,
पर्स तो मेरा मिला है,
पर्स तो मुझे मिला, मुझे मिठाई खिलानी चाहिए, तो ये किस चीज़ की मिठाई कह रहे हैं। तो कोई शख्स कहता है कि ये आपका इनाम है। तो मैंने कहा कि मेरा इनाम, मेरे नाम मेरे लिए किस लिए? तो कहा कि साहब आपकी जब खोई हुई रकम मुझे मिली तो इस बात पर मैं आपको मिठाई खिला रहा हूँ कि मेरा ईमान मच गया।
अल्लाह,
क्योंकि जब से पर्स मिला ना तो मैं बड़ी आजमाइश में आ गया था।
पैसे भी थे,
मेरी परेशानियां भी थी, प्रॉब्लम भी थी, लेकिन जब आप, मैंने जहन बना लिया कि मुझे आपको अपनी आपकी रकम वापस करनी है, तो ये इनाम इसलिए है कि मुझ पर आजमाइश आई और मैं इस आजमाइश में कामयाब हुआ, आपकी रकम मैंने आपको वापस की, तो ये इस खुशी में मैं आपको ये खिला रहा हूँ। तो वो शख्स कहता है कि मेरे दिल में जो बात थी ना कि इनाम किस पर होता है अल्लाह का, तो मेरी बात असल में वहां साबित हुई कि असल इनाम जो है वो किस पर होता है। तो ये उमर भाई एक बड़ा बेहतरीन मौजू है, क्योंकि बसा औकात जो हम जिंदगी जो गुजारते हैं ना, तो उसमें अपने गोल्स होते हैं, मुझे माल मिल जाए, मेरी शोहरत हो जाए, मेरा कोई ऐसा काम बन जाए, मेरा स्टेटस हो जाए, मेरी शोहरत हो जाए। तो लेकिन दर हकीकत जो हम अगर कुरान और हदीस की रूह से, बींग अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने की हैसियत से जब अपने इन किरदार को देखते हैं, तो पता चलता है कि जो इनाम तकवा परहेजगारी इख्तियार करने वालों को, सच्चाई इख्तियार करने वालों को, नेक आमाल इख्तियार करने वालों को जो मिलती है ना, वो है असल इनाम। और ये जब होता है कि जब बंदा डरे अल्लाह से और हर काम करने से पहले इस बात को सोचे कि कहीं इस काम से रब ताला मुझसे राजी होगा या रब ताला मुझसे नाराज होगा। तो असल में बात यही है कि इनाम ये हासिल करना चाहिए जिससे दुनिया के भी बरकतें मिलेंगी और इंशाल्लाह कब्र और आखिरत में मिलेंगी।
यानी ये माशाल्लाह आपने बड़े प्यारे अंदाज से कहानी से समझा दिया कि हकीकी इनाम ये है कि बंदा जो है वो गुनाह से बच जाए, इबादत पर इस्तिकामत मिल जाए, उसको तकवा नसीब हो जाए, और ये हकीकी अल्लाह पाक का इनाम है। क्योंकि बाज़ औक़ात माल मिल तो जाता है, ये आजमाइश की भी सूरत होती है, बाज़ औक़ात आजमाया जा रहा होता है, शुक्र भी अदा करता है या नहीं करता, और नाशुक्री करके बंदा जो है वो बाज़ औक़ात नेमतों से महरूम होता है, रब के नाफरमानों में आता है। तो ये माशाल्लाह आपने बताया कि हकीकी नाम ये है कि बंदा नेकी और तकवा इख्तियार करे।
बिल्कुल, ये अगर कुरान से भी अब रहनुमाई लेते हैं ना, एक आयत मुबारक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है सूरह तौबा में कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, कि अल्लाह पाक परहेजगारों से मोहब्बत फरमाता है, और फिर नेकी करने का जो हुक्म भी इरशाद फरमाया वह अहसिनू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, कि नेकी करो, बेशक नेकी करने वालों से अल्लाह पाक मोहब्बत फरमाता है। तो यहाँ अगर हम अपनी जिंदगी का जायजा ले, मतलब जन के नाजिन भी गौर करे और सोचे कि हम जो मयार नेकियों का जो बनाते हैं ना, वो छोटी नेकी बड़ी नेकी इससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसे तो कई ऐसे वाकयात हैं, कांटेदार शाख जिसने हटाई रास्ते से है, तो अल्लाह पाक ने उसकी भी बख्शिश फरमा दी। प्यासे कुत्ते को अगर किसी ने पानी पिलाया तो मौलाना ने लिखा है किताबों में, अल्लाह पाक ने उसको बख्शिश अता फरमा दी। जिंदगी का ये जो हिस्सा है ना कि जिसमें इंसान अगर किसी सबब से आजमाइश में मुबतला हो, तो ऐसे में रब ताला की जो अहकामात हैं, जो जो इस्लाम को, दीन को जो मतलूब है, जो इस्लाम चाहता है कि एक मुसलमान ये काम करे, उस वक्त अगर वो अमल कर जाता है तो वो दिल में उसकी ठंडक हो जाती है।
जैसे आपने अभी वाक्या बयान किया, तो उस शख्स पर जो आजमाइश का मौका है यहाँ था, उसने अमानतदारी के हुक्म पे अमल करना
बेशक,
था
बेशक
दीन इस्लाम का हुक्म है अमानतदारी को इख्तियार करने का, हमें शरीयत ने हुक्म दिया, अल्लाह रसूल ने हुक्म दिया है। तो हुजूर अमानतदारी की अहमियत क्या है दीन इस्लाम में, कुछ हमारे नाजरीन के लिए मदनी फूल हो जाए।
سورہ نساء کی آیت مبارکہ ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کی سپرد کر دو۔ تو اب اگر راہ چلتے ہوئے کوئی پرس مل گیا یا کوئی ایسا ہوا، تو دیکھیں اصل ہے تو یہی نا کہ یہ جو چیزیں ہیں، اور پھر کئی ایسے زندگی کے مراحل ہوتے ہیں عمر بھائی، اگر مثال خاندانوں میں لیں تو کسی کا انتقال ہو گیا، اب اس کے چھوٹے بچے ہیں، اب یہاں یہی آزمائش ہے نا کہ اس یتیموں کو ان کا حق ادا کیا جائے۔
ہو سکتا ہے مرحوم نے اس کو پیسہ دیا ہو، قرضہ دیا ہو، کسی کو پتہ ہی نہ
پتا نہ ہو،
اب یہاں امانت داری کے ان کا حق دے۔
بات بتاؤں، آپ نے بہت ہی ایک سلگتی ہوئی ایک بات یاد دلائی کہ ایسا ہوتا ہے، میں ایسے افراد کو جانتا ہوں کہ ان کا مطلب جو بزنس تھا نا، وہ سمجھے اپنے بزنس لے کے چلتے تھے، اپنا سامان جو یعنی لاکھوں کروڑوں روپے کا بھی مال وہ سمجھے کہ جیبوں میں ہی ہوتا تھا، تو ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور آج کل بدقسمتی سے ہوتا ہی یہی ہے کہ جب کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں تو انسان لوٹ ماری کرتا ہے نا۔ وہ بڑی عبرت والی بات مجھے یاد آ گئی کہ جب زلزلہ آیا تھا، امیر سنت نے واقعہ لکھا تھا کہ بس میں مسافرین جا رہے تھے، تو اچانک ایک بس میں جو ہے وہ زلزلہ جو زدگان جو علاقے تھے ان میں کوئی بس جا رہی تھی، تو کہا کہ مسافر بیٹھے تھے، اچانک ایک سانپ نکل آیا، تو سانپ نکلا تو لوگ ایک دم سے اٹھ گئے کہ بھائی سانپ ہے۔ اب وہ سانپ کو جو ہے وہ لکڑی سے انہوں نے اٹھایا اور اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینکا کسی نے، تاکہ یہاں سیف ہو جائے، تو جیسے ہی پھینکا نا تو باہر ایک موٹر سائیکل والا جا رہا تھا، اس کے ہاتھ پر سانپ گرا اور سانپ نے ڈس لیا اس کو۔ اچھا سانپ نے ڈسا تو وہ ایک دم سے زہر نے اثر کیا، اور دیکھتے دیکھتے موٹر سائیکل گرا اور بس رکی، لوگ بھاگے، اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب لوگ بڑے افسردہ ہو گئے کہ ہم تو اپنی جانیں بچا رہے تھے، بےچارا اپنی جان سے چلا گیا۔ اس کے بعد بھائی دیکھو کون ہے یہ، ذرا اس کا بیگ ویگ چیک کرو۔ عمر بھائی جب اس کا بیگ کھلا گیا تو اس میں دو ہاتھ تھے لیڈیز کے، یعنی زلزلے میں کوئی عورت تسیوی ہوگی، انتقال ہو گیا ہوگا۔ اب اس نے کوشش کی کہ اس کے وہ سونے کے کنگن اتریں، اب اس نے اتارنے کی کوشش کی لیکن لاش پھول گئی تھی، تو ایسے میں اس کو یہی سمجھ میں آیا کہ میں ہاتھ کاٹ کے اپنے پاس بیگ میں رکھ لوں، گھر جا کے میں نکال لوں گا۔ اب وہ اس طرح سے وہ جو تھا اس نے اپنی یہ معاملہ کیا، لیکن دیکھیں موت کیا ہو گیا اس کے،
برے کام کا انجام،
برے کام کا انجام برا ہے۔ تو یہ اصل میں ہوتا یہی ہے کہ اس طرح کا کبھی کوئی موقع آتا ہے نا۔ دیکھیں اسلام کا جو پھیلنے کا سبب بنا، تاریخ اسلام کو مطالعہ کریں۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک اوورسیز میں غالباً یو کے لندن کی طرف تھا کوئی واقعہ، ایک امام صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک مسجد کا امام تھا، تو کہا کہ میں اپنے گھر سے مخصوص وقت میں نکلتا تھا، اور اتفاق سے میرا ٹائم بھی فکس تھا نکلنے کا، تو روٹ کی جو بس تھی نا وہ سیم بس آتی تھی، یعنی جیسے میں 7 بجے نکلوں اور 7 بجے ہی وہ بس کا ٹائم ہوتا تھا، تو ایک ہی ڈرائیور ایک ہی بس، عام طور پر ایسے ہی ہوتا تھا، تو میں اس میں بیٹھ جاتا تھا پھر آگے اپنے اسٹاپ پہ اتر جاتا تھا۔ تو وہاں یہی ہوتا ہے کہ بس میں سوار ہوتے تو پیسے پیمنٹ پہلے ہوتی ہے، تو ریٹرن بھی دیتے تھے کچھ سکے وغیرہ۔ تو کہا ایک دن میں نے بس میں چڑھا، میں نے پیمنٹ دی تو اس نے مجھے ریٹرن سکے دیے، میں سکے لے کر اپنی سیٹ پر آ گیا۔ اب جیسے سیٹ پر آیا میں نے سکے گنے تو ایک کوائن زیادہ تھا۔ اچھا کوائن بھی یوں سمجھے کہ پیسوں کے معاملے میں چھوٹی سی رقم تھی، تو کہا کہ میرے دل میں آیا کہ یار کیا فرق پڑتا ہے، یہ بڑی کمپنی کی بس ہے، اس کو میرے چھوٹے سے سکوں سے کیا فرق پڑے گا۔ اب اسی ششوپنج میں تھا کہ اچانک وہ سکے میرے ہاتھ میں ہی تھے، تو میرا اسٹاپ بھی آ گیا، تو اترتے اترتے میں نے ڈرائیور کو کہا کہ سوری آپ نے یہ سکہ مجھے زیادہ دے دیا ہے۔ تو جیسے اس نے سکہ لیا نا تو اس نے کہا کہ یہ جو راستے میں مسجد آتی ہے اس میں آپ وہیں ہوتے ہیں؟ کہاں، میں امام ہوں وہاں کا۔ اچھا اچھا اچھا، میں کچھ عرصے سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ یہیں اترتے ہیں۔ میں کافی عرصے سے اسلام کو اسٹڈی کر رہا تھا، تو اس میں میں نے ایک چیز دیکھی تھی کہ مسلمان بڑے ایماندار ہوتے ہیں، تو میں آپ کو ٹیسٹ کر رہا تھا، میں آؤں گا آپ کے پاس، ملوں گا آپ کو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اس نے کہنے کو تو بات کہہ دی، لیکن جیسے ہی میں اترا نا میں نے پول پکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ میں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، ورنہ یہ چند پیسوں کے بدلے میں اسلام کو ہی بیچ رہا تھا، میں اسلام کو بیچ رہا تھا۔ تو ہم غور کریں اور سوچیں، कि हमारे यहाँ तो अंदाज क्या है, किसी ठेले वाले के पास गए तो कहीं से सब्जी का टुकड़ा उठा लिया, फ्रूट वाले के पास गए तो कुछ फ्रूट निकाल लिए, कोई चौड़ा सीना है, कोई गरीब आदमी गुजर रहा है तो चने भर लिए, तो इस तरह की छोटी छोटी बातें होती। लेकिन हम सोचें, गौर करें कि इस्लाम हमें तालीम क्या देता है, और इस्लाम की जो तालीमात है उस पर अगर हमारा अमल है तो फिर देखें, फिर इस्लाम की तरक्की में हमारा भी हिस्सा है।
देखिए, कुरान पाक की आपने आयत बयान फरमाई ना कि अमानतें अदा कर दो, इसी तरह प्यारे अकाली सलातु वस्सलाम का फरमान है, ला ईमान अली मल ला अमानत अल्लाह, उसका ईमान नहीं जिसमें अमानत नहीं, यानी उसका ईमान कामिल नहीं है। और ये भी कहा गया कि जो अमानतदार नहीं है उसका बुरा खात्मा होने का खौफ है। तो ईमानदारी की, अमानतदारी की हमारे दीन इस्लाम में अहमियत, ये नहीं है कि हमें जमीन से चीज मिल गई, अल्लाह की जमीन से मिली है ये मेरी हो गई,
ऐसा तो यही होता है ना जी। चप्पल कोई चोरी करके ले जाए मस्जिद से, अगर मिसाल कोई उठा के ले जाता है इस तरह से, तो हम तो ये कहते ना कि भाई किसी ने लिया ना, हम भी थोड़ी छोड़ेंगे, है हम किसी और के ले जाते हैं। तो ये तो आजकल तो कौन माफ करता है, इस तरह कौन छोड़ता है। लेकिन यही बात अगर हम अपनी तबीयत में लाएं, और फिर देखें वो हमारी मेमनी को कहते सुई जे वासे डोरो, यानी सुई के पीछे धागा होता है। अगर आज हम कुछ ऐसा अटेम्प करते हैं तो याद रखिए कि इसको हमारे बच्चे कॉपी करेंगे। और अमीर अहले सुन्नत अपनी सीरत का वाक्य बयान करते हैं कि हम तो गुरबत में जिंदगी गुजारते थे, तो हमारे घर में चने जो है वो उसके छिलके उतारे जाते थे। तो मैं अगर कभी कभी अगर ऐसे छोटा बच्चा ही था तो मैं मुंह में डाल देता था, तो अम्मी जाकर दुकानदार से माफी मांगती थी कि भाई आप इतना हमको उसमें कर लेना, ये बच्चे ने यूं कर लिया, और अपने हमको समझाते थे कि ना ये नहीं करना है। तो ये जो दर्स है ये हमारे लिए ना कि हम इसमें अपने बच्चों को क्या तरबियत दे रहे हैं, खुद हमारी लाइफ में क्या है, फिर आने वाली नस्लों का क्या बनेगा।
और हुजूर इसमें ह्यूमन राइट्स का भी एक दर्स है कि दीन इस्लाम का ये हुसन है, जो इंसानी हुकूक है हमारा दीन इस्लाम उन्हें बयान करता है और अमानतदारी का हमें दर्स देता है। हुजूर जैसे ये आजमाइश का हमने सुना कि उस शख्स को यूं आजमाइश आई कि उसको पैसे मिल गए और वो माशाल्लाह कामयाब भी हुआ, उसने वापस भी लौटा दिए, तो आजमाइश आए, बंदा किस तरह उसको फेस करे, किस तरह उसमें कामयाबी हासिल करे, किस तरह अपने दिल को मनाए।
कामयाब कैसे होना है, तो उलमा फरमाते कि जन्नत में जाना है, जन्नत में जाना ये असल कामयाबी है। और कुरान पाक में वाज़े इरशाद है कि फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फकद फाज़, तो जिसे आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो वो कामयाब हो गया। तो ये कामयाबी के ही तो तरीके बयान किए जाते हैं कि ये आजमाइश है पर्स का मिलना, कि मैं बहुत आजमाइश में था, मेरे घर में प्रॉब्लम थी और मैं ऐसे में रास्ते में कुछ मिल जाए तो मैं तो यही कहूँगा यार मिल गया अपने को, हम तो दुआ करके निकले थे। लेकिन वही बात है ना कि शरीयत का हुक्म यही है कि ये चीज़ हमारी नहीं है, ये जिसकी है उसको लौटानी है। और इसके अहकाम है कि अगर हमने उठाया है तो अब जाहिर है उसको फिर तलाश करना और ये सारे इसके लवाजमात करने। तो इस तरह से जब भी ऐसा कभी कोई मौका मिले, मैं तो यकीन माने हजरत कि बस ये अल्लाह पाक का करम है कि दावत इस्लामी का दीनी माहौल मिला है। अमीर अहले सुन्नत की सीरत के जो वाकयात है ना, अमीर अहले सुन्नत ने एक मरतबा इस तरह का बयान किया था, बहुत पुरानी बात है 90s की, 93-92 इस तरह की, तो मुझे याद है कि इस तरह से बयान किया था कि वो आज घर गए तो चप्पल जब उठाए तो वो चप्पल कुछ वजनी थे, तो कहा कि मैंने जब पलट के देखा तो उस दौर में प्लास्टिक के चप्पल चलते थे जिसमें नीचे खाने बने होते थे, तो हमने फरमाया कि उसमें एक है ना कंकर लगा हुआ था जो रोड़ी कहलाती है हमारे यहाँ क्रश, जो छत में जब भराई डालते हैं ना, तो कहा कि चूंकि फैजान मदीरा की तामीर हो रही थी तो मैं समझ गया कि वहां से हम चलकर आ रहे हैं तो हो सकता है किसी पाँव किसी क्रश पर पाँव पड़ा होगा तो आ गया उसके अंदर, तो कहा कि मैंने उसको निकाला, उसको धोकर जेब में रख लिया, शाम को आकर मैंने तो भाई इसमें डाल दिया वापस। तो अमीर सर बयान किया था कि आप लोग ये सैकड़ों हजारों आते हो और अक्सर आजकल यही चप्पल पहने जा रहे हैं, तो कहा एक एक दाना भी ले जाओ सारे तो पता नहीं कितने ट्रक खाली हो जाते होंगे, तो कहा कि ये तो मस्जिद का माल है, तो मेहरबानी करें आप लोग जो ना अपने चप्पल चेक किया करें। उमर भाई यकीन माने मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम चप्पल चेक करते थे, ये सीखने को मिला ना, वरना आज तो मोहल्ले में अगर ट्रक उतरे मस्जिद का तो घर वाले तो खुद बोलते हैं, जा जरा रेती की डब्बा तो भर के आ, बर्तन मांजने में बहुत अच्छे बर्तन साफ होते हैं भाई, साफ होते हैं तो आप बाजार से रेती मंगाए ना, ये तो मस्जिद की रेती है, मस्जिद की सीमेंट है, मस्जिद का स्टूल है, मस्जिद का पानी है। कि नहीं भाई वहां तो सोलर लगा हुआ है तो मस्जिद में तो पानी आता है, जरा नल लगाओ भाई, बाल्टियां भर के आओ। तो ये चीजें अगरचे बसा औकात कहते हमको कौन मना करे, जो मना करे फिर उसको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये अंदाज जिंदगी का बदलना पड़ेगा ताकि जो इसकी रूहानियत और जो बरकत है ना वो हमें हासिल हो।
सुभान अल्लाह। जरूर, ये माशाल्लाह आपने जो वाकया बयान किया, वो शख्स जो बड़ा खुश हुआ था, मिठाई भी उसने खिलाई और वाकई इनाम तो उस पर हुआ कि उसने रकम लौटा दी और खुशी का इजहार किया। तो ये उसकी एक खुलूस है, इसका तवक्कुल है, इसके बारे में क्या कहेंगे?
नहीं, असल में वो कहीं एक बड़ी खूबसूरत बात पढ़ी थी, हजरत मोहम्मद बिन अली तिर्मिजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के हवाले से फरमाते हैं कि आखरत में कामयाबी कसरत आमाल से नहीं होगी बल्कि आमाल के इखलास और उनके हुसन की वजह से होगी। यानी जो काम हम कर रहे हैं, कि अगर मिसाल मस्जिद में गए, अब इमाम साहब ने बड़ा जोरदार बयान किया कि भाई अल्लाह की राह में खर्च करो खर्च करो, अब हमने कहा यार चलो यार आज तो यार 100 रुपए दे ही डालते हैं, पर्स निकाला, मिसाल 5 नोट हैं 100 रुपए के, अमीर साहब फरमाते कि उस वक्त भी हम जो देंगे ना तो मरियल नोट निकालेंगे,
पुराना
नोट निकाल कर दे। अरे भाई कोई कड़क नोट 110 का तो नहीं होता है ना, यानी बच गया मदरसे में दे दो, बच गया इमाम साहब को भेज दो। अरे मजा तो जब आए, जब दावत है और घर में देग खुली है, पहली पहली डिश जो है वो इमाम साहब को नजराना पेश किया जाए। तो ये जो चीजें होती है ना, ये सारी है वही। वो शख्स जो मिठाई का डब्बा लेकर आया वो क्या था कि यार मुझे जो आजमाइश हुई ना, इस आजमाइश में मैं साबित कदम रहा, सोचता तो रहा कि यार हो गया काम आज करना है, लेकिन बस अल्लाह पाक ने रहम किया करम किया, ये तुम्हें जो मैं तुम्हारा पर्स लौटा रहा हूँ ना भाई, इस खुशी में मैं तुम्हें मिठाई खिला रहा हूँ।
आपने शुरू में माशाल्लाह एक बात कही थी कि एक होती है खुशी, बाज़ों का ज़ाहरी असबाब पैसा या कुछ दुनियावी मालो असबाब होते हैं तो एक खुशी होती है, लेकिन एक होती है कल्बी सुकून, एक दिली खुशी होती है, हकीकी खुशी होती है। तो बाज़ों का हम ज़ाहरी चीज़ों की तरफ तो भाग रहे होते हैं, हम देखते हैं माशरे में लोग वह पैसा बहुत होता है लेकिन टेंशन की वजह से रात को नींद नहीं आ रही। तो ये जो इस बंदे ने काम किया, इसका जो इकदाम था, इसको हकीकी खुशी जो है हासिल हुई। एक शख्स का वाक्या लिखा है हुजूर के, बाप बेटा जो है ना वो खेत में गए तो पुराना जूता नजर आया, तो देखा कि कोई किसान काम कर रहा है, तो चलो बेटे ने कहा कि अबू इसका जूता छुपा देते हैं तो थोड़ा शुगल करते हैं। तो बाप ने कहा कि बेटा तुमने अगर खुशी हासिल करनी है तुम ऐसा करो, इसके जूते के अंदर ना थोड़े से पैसे रख दो, मुझे तो गरीब आदमी लगता है, और हम ना दरख्त के पीछे छुप के देखते हैं क्या होता है। कुछ देर के बाद वो बंदा आया, जो उसे आके जूता पहना तो उसे महसूस हुआ कुछ है, उसने खोल के नीचे देखा तो उसमें से पैसे निकले। अब वो हैरान हो आंखों को बार बार देख रहा गौर से कि वाकई पैसे ही हैं। अच्छा फिर इधर उधर देखा कि ये क्या चीज़, कौन दे गया, कोई बंदा नज़र नहीं आया। तो हुजूर हुआ क्या कि वो पैसे जब मिले तो उसने जेब में पैसे डाले, घुटनों के बर गिरा और अल्लाह की बारगाह में दुआएं करने लगा कि या अल्लाह तुझे पता है कि मेरी बीवी बीमार है, मेरे बच्चे भूखे हैं, ये तेरी तरफ से अता हुई है, और वो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और बहुत रोया वो। अच्छा जब वो बेटे ने देखा ना तो वो भी रोने लगा, और बाप ने कहा कि बेटा अब बताओ जूता छुपाने की खुशी ज्यादा होनी थी या अब खुशी ज्यादा हो रही। तो दूसरों को खुशी देकर जो खुशी हासिल होती है वो हकीकी खुशी है।
यही असल में है, ये जो कहते हैं ना जिंदगी के एक लम्हे का फैसला इंसान को अल्लाह पाक का महबूब बना सकता है। तो कभी ऐसा मौका मिले तो अगर इनके फजाइल पर ध्यान दें, और यानी यकीनन जो चीज मेरी नहीं है तो मेरी नहीं है, वो चाहे वो 100 रुपए हो या 1 करोड़ रुपए हो, मेरे नहीं है। तो जब कभी ये काम करके देखेंगे और इससे जो हकीकी लज्जत मिलेगी, क्योंकि बाज़ औक़ात उमर भाई ये बात देखी जाती है कि इंसान जब इस तरह की कोई माल आता देख ले, जैसे आजकल बदकिस्मती से मोबाइल और ये वो सब चीजें छीनी जाती हैं, और यही सोचता है कि यार मैं अगर नौकरी करता तो पता नहीं कितने महीनों में मेरे को लाखों रुपए मिलते, और देखो यार एक दो मोबाइल छीने तो मेरे को तो दो एक साल की दिहाड़ी लग गई पूरी है। तो बजाहिर ये है, लेकिन अब कोई गौर करे और सोचे कि ये जो मैंने लाखों लाख करोड़ों रुपए कमाए हैं या लिए हैं, इससे मेरे घर में क्या बरकत है। जुल्म व सितम ज्यादतियां करके बड़ी बड़ी कोठियां बना ली हैं, आता है मजा? सुकून नहीं मिलेगा आपको आपके इस घर में? आपको जो भी आपने इस तरह की चीजें ली हैं, किया है, ठीक है दुनियावी तौर पर आपका नाम हो गया कि बड़ा मालदार है, बड़ा ये है, लेकिन दर हकीकत इससे सुकून नहीं है। तो अल्लाह पाक की रिजा के लिए अल्लाह के बंदों पर रहम कीजिए, और कभी ऐसा कोई मौका मिले तो रब के इनाम याफ्ता बंदों ने जिस तरह अमल किए हैं, हमें वही अमल करना है।
सुभानअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सुनने की समझने की सआदत हासिल की कि अल्लाह का इनाम किसे कहेंगे। अल्लाह ने हमें इबादत की तौफीक दी, नेकी की तौफीक दी, दीन पर अमल की तौफीक दी, तो ये हकीकतन अल्लाह का इनाम है, और दुनिया की नेमतें ये आरजी हैं, फ़ानी हैं। तो अल्लाह करीम की बारगाह में हम इल्तिजा करते हैं कि हमें अपने इनाम याफ्ता बंदों में शामिल फरमाए। आमीन बिजाही खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।